पुस्तक 7-8 लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमिऊणन्तजिनं अनन्तनाणेन दिष्टसौवर्ठं कम्मपदेशविहत्तिम् यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयदोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक प्रदेश विभक्ति नाम का जो अर्थाधिकार चल रहा है अपना, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 10 पर आ गए, 10। कल जो हमने देखा था उसी की अभी विशेषार्थ में ये बात फिर दोबारा बता रहे हैं। अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति 10 पृष्ठ पर विशेषार्थ। प्रथमादि पृथ्वियों में गुणित छह पृथ्वियों में बराबर प्रथमादि छह पृथ्वियों में गुणित कर्मांश विधि से आए हुए जीव के नरक में उत्पन्न होने के प्रथम समय में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। देखो, जब सातवें नरक में घटित करना है तो अंतिम समय मिले, और पहले 6 पृथ्वियों में घटित करना है तो पहले समय में, यानी जिसने सातवें में गुणित कर्मांशिक से उत्कृष्ट किया है, फिर एक भव का तिरियंज करके फिर छठे नरक में आएगा या अन्य किसी नरक में चला जाएगा, तो वहाँ पहले समय में उसका होगा। यानी उसने पहले में गुणित कर्मांशिक विधि से उत्कृष्ट कर लिया है, उसके बाद पंचेंद्रिय का एक भाव करके फिर नरक में उत्पन्न हुआ है ऊपर के 6 नरकों में, तो उसके पहले समय में उत्कृष्ट होगा। जघन्य उत्कृष्ट एक समय का अर्थ होता है उत्कृष्ट ने उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति ने, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक ही समय होता है, उसको जघन्य भी कह सकते हैं, उसको उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, यानी उसमें जघन्य उत्कृष्ट का भेद ही नहीं है, एक ही समय के लिए पाया जाता है। तो उसका अन्यथा जहाँ अन्यत्र जहाँ काल की चर्चा होती है, जैसे मिथ्यात्व में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है, शादी शांत काल, तो जघन्य में अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कितना है, मिथ्यात्व में रहने का शादी का अर्थ है एक बार समय तो होके आया है अर्धपुद्गल परावर्तन, ये जघन्य और उत्कृष्ट हुआ, परंतु जहाँ काल एक ही समय है उसी को हम जघन्य भी कहे उसी को उत्कृष्ट भी कहे, एक समय के लिए ही होता है वो उत्कृष्ट, एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ तो उसका जघन्य काल कितना है, एक समय, अधिक से अधिक काल वो भी एक समय, लगातार 2-4 समयों तक होता तो हम कहते उत्कृष्ट काल 4 समय का है। उत्कृष्ट काल का अर्थ क्या है कि लगातार कितने समयों तक उसकी प्रदेश विभक्ति वही रहती है, अभी हम उत्कृष्ट की बात करते हैं, तो उत्कृष्ट 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 लगातार कितने समय तक रहती है, एक ही समय तक रहती है, दूसरे समय अंतिम समय में घटित किया है, दूसरे समय में अनुत्कृष्ट हो जाता है, अन्य भव में चला जाता है। अब ऊपर के 6 नरकों के लिए क्या है, गुणित कर्मांशिक विधि से आया है और उसके पहले समय में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय सबका लिया, उत्कृष्ट होता है, इसलिए इन नरकों में 11 पृष्ठ पर दूसरी लाइन चल रही है, उक्त कर्मों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का, जघन्य और उत्कृष्ट काल, समझ में, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक समय, तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल। अभी छह नरकों में कैसा घटित करेंगे, वहां की जो जघन्य स्थिति है, आयु है, उसमें से पहला समय उत्कृष्ट वाला निकाल दो, तो शेष बची हुई जो स्थिति है उसको हम उसका जघन्य काल के। देखो, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल किसमें घटित कर रहे हैं, नरकों में। एक समय कम जघन्य स्थिति प्रमाण, स्थिति ने आयु, जघन्य आयु प्रमाण, उस नरक की जघन्य आयु। जैसे पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, तो वहां अनुत्कृष्ट की जघन्य काल कितना है, एक समय कम 10,000 वर्ष, ऐसे घटित करना। और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, पहले नरक में अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कितना है, तो अनुत्कृष्ट के साथ ही आया है, तो उस नरक की जो उत्कृष्ट आयु है एक सागर, वो उसका उत्कृष्ट काल कहेंगे, क्योंकि उसके बाद मार्गणा ही बदल जाती है, भले वो अनुत्कृष्ट रहे परंतु मार्गणा बदल जाएगी, तो नरक के लिए उसका उतना उसका अनुत्कृष्ट कहेंगे। मात्र इन नरकों में अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सामान्य नारकियों के समान भी संभव है, भी लिखा है, यानी यहाँ भी कैसे हो सकता है,
मरण की अपेक्षा, संयोजना की और मरण हुआ,
संयोजना की और मरण किया, या एक बार विसंयोजना की
तो अंतर्मुक्त हो जाएगा।
हाँ, तो अंतर्मूर्ति, ऐसे भी अंतर्मूर्ति होगा ना।
हाँ, नहीं, यहाँ पे तो एक समय के लिए बताया, यहाँ पे एक समय के लिए बताया,
अनुत्कृष्ट उसमें तो साधन मिलाया था उसको, औपशमिक समय तो प्राप्त किया था और साधन में आया
और मरण हो गया,
एक मरण के, एक समय के बाद मरण हुआ, तो एक समय के लिए अनुत्कृष्ट है, जघन्य काल एक समय का है ना, यहाँ पर इन्हें सांसाधन में आकर मरा, हाँ, छह नरकों में, सातवें नरक में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई सांसाधन में मरता ही नहीं, मिथ्यात्व में जाएगा, आयु का बंद करेगा और मिथ्यात्व में ही मरेगा, सातवें नरक के लिए। ऊपर के छह नरकों में सांसाधन में लाना है, आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसको प्रथम ऑप्शन समय से प्राप्त कराना,
विषयुद्ध भी करवाना,
प्रथम ऑप्शन समय तो प्राप्त कराना, फिर वहाँ विसंयोजना करानी
और एक समय,
और फिर एक समय के लिए सासाधन में आएगा। विसंयोजना के बिना उसकी तो सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रही, तो हमें तो अनुत्कृष्ट की सत्ता एक समय के लिए वहाँ देखनी है, इसलिए विसंयोजना वाला है सासाधन में आया है, ऐसा विचित कर सम्यक कर सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति प्रथमादि छह नरकों में जो गुणित कर्मांशिक जीव आकर और वहां उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में यथाशास्त्र ने आगम में जैसा बताया है वैसा, उपशम सम्यक्त को प्राप्त करता है, उसके अंतिम समय में होती है। एक्चुअली उपशम सम्यक्त के अंतिम समय में कहा है, परंतु उपशम सम्यक्त के काल में जब गुण संक्रमण होता है
तभी अंतिम समय,
नहीं बाद में भी विद्या संक्रमण तो होगा, उपशम सम्यक्त के अंतिम समय में होती है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। ओरिजिनल में क्या कहा था, गुण संक्रमण के अंतिम समय,
गुण संक्रमण के अंत में,
ऐसा मुझे लगता है
अंत में,
गुण संक्रमण के अंतिम समय में होगा। कल हमने ये उत्कृष्ट के जघन्य का देखना, उत्कृष्ट का देखना है ना, नौ पेज पर, हाँ विशेषार्थ के ऊपर मिला चौथी लाइन, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश वक्त जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, एक समय इतना ही लिया वहाँ पर।
कल हमने किधर देखा था ना,
कल ही देखा था
गोड़ संक्रम
छठवे, हाँ हाँ छठवे भाग में हमने बरोबर, और वहाँ लिखा भी मैंने पेज 116 पुस्तक, छठवी पुस्तक में हमने 116 पेज पर देखा था गुण संक्रमण के अंतिम समय में लिया, छठी पुस्तक 116 पृष्ठ, वो गुणित कर्मोशिक से आया है, किसी नरक में उत्पन्न हुआ है, अभी मिथ्या दृष्टि है और प्रथमोपशम समय को प्राप्त किया, तो वहाँ प्रथमोपशम समय को प्राप्त करते ही पहले समय से गुण संक्रमण शुरू होता है। गुण संक्रमण का अर्थ क्या होता है?
गुणित प्रमाण में,
हाँ गुणित प्रमाण में असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा प्रमाण में संक्रमण होता है उसका, मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप से परिणमित होते हैं अंतर्मूर्त तक, बाद में उसका विद्या संक्रमण वो स्लो डाउन होता है। तो वहां जो हमने पढ़ा था उसमें गुण संक्रमण का अंतिम समय लिया था, वहां ज्यादा एकदम उसमें दिया जाता है द्रव्य,
ये सम्यक का तो पहले नरक में होगा ना, जो सपना कर रहा है उसका नहीं होगा ज्यादा,
किसकी बात चल रही है? सम्यक
तो
की?
और सम्यक
सम्यक मिथ्या तो है ही नहीं वहाँ पर,
नहीं सम्यक तो का हो सकता है,
हाँ सम्यक का तो हमने पहले नरक में उसको लिया,
सपना करने वाला जीव जो आता है उसके पहले
उसको लिया था वहाँ पर, कृतकृत्य वेदक को लिया था, वो पहले नरक में ले सकते हैं सम्यक प्रकृति के कृतकृत्य वेदक के पहला समय, यानी यहाँ उत्पन्न होने पर पहला समय, उसके पहले समय में मरकर वो नरक में नहीं आएगा, यानी कृतकृत्य वेदक का नरक में पहला समय,
ये ज्यादा हो जाएगा ना जो कृतकृत्य
वेदक वाला ज्यादा होगा, क्यों? उसमें मिथ्यात्व के परमाणु समय मिथ्यात्व के सभी का
सभी
का
रूप हो जाता है,
इस रूप हो जाता है,
पहले समय में उत्कृष्ट होगा,
हाँ कृतकृत्य वेदक से जो नरक में उत्पन्न हुआ है उसका लेना है, वहां भी फिर उसकी भी कंडीशन लगाओ, पहले गुणित कर्मांशिक था,
हाँ
फिर जल्दी से जल्दी मनुष्य में आया, सपना की
अंतर्भूत पर सपना चालू कर दी,
एक सौ सोलह पर कल देखा था ना हमने,
जल्दी से जल्दी सपना चालू कर दी आंख करके पश्चात,
हाँ
तो प्राप्त किया और पीछे सपना चालू किया,
उपशम समय का अंतिम समय ही लिया था वहां पर, देखो 116 पृष्ठ पर मैं फिर पढ़ती हूँ, यहाँ लिखा है चौथे लाइन में सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है, सातवें नरक के जिस नारकी के अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा, यानी हो सकता था उसको, उसके बदले क्या किया वो पहले औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त किया, वह विपरीत जाकर सम्यक्त को प्राप्त कर गुण संक्रमण के उत्कृष्ट काल के द्वारा, गुण संक्रमण उसने उत्कृष्ट काल तक किया, सम्यक मिथ्यात्व का संचय कर, संचय किया क्योंकि उसमें गुण संक्रमित हुआ, दर्शन मुख की तीनों प्रकृतियों में से एक का उदय होगा किंतु ऐसा न होकर, यानी उदय होगा किंतु ऐसा नहीं हुआ, यानी वो उपशम सम्यक्त का अंतिम समय ही है, यानी गुण संक्रमण का अंतिम समय नहीं लेना, वहाँ उपशम सम्यक्त्व का ही अंतिम समय लिया, और वहाँ लिखा भी हमने, वहाँ लिखा है क्या आपने छठी पुस्तक में लिखा है?
नहीं
मैंने तो वहाँ लिख के रखा है उपशम सम्यक्त्व का अंतिम समय। हाँ, तीनों में से एक का उदय होगा,
उन्होंने डॉक्टर हाथ से लिखा,
मैंने मेरे पुस्तक में हाथ से लिखा हुआ पाया। देखो तीनों दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों में से एक का उदय होगा, कब होगा? उपशम काल समाप्त होने पर,
उसके पहले,
परंतु ऐसा नहीं हुआ, यानी वो अंतिम समय है, ऐसे होकर स्थित हुए उपशम समय दृष्टि के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, और सम्यक की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक वाला जीव सातवीं पृथ्वी से निकलकर तिर्यंश के संख्यात भवों में भ्रमण करके मनुष्य हुआ, सबसे लघु काल के द्वारा दर्शन मुख के क्षपण का आरंभ करके, मैंने कहा ना वहाँ कृतकृत्य नहीं लाना है, परंतु कृतकृत्य करने के पहले क्या कंडीशन करनी? गुणित कर्मांशिक वाला लेना, दो तीन भव करके मनुष्य में आया है, उसने जल्दी से जल्दी क्षपण का प्रारंभ किया है, और कृतकृत्य वेदक काल में मरकर यहाँ नरक में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होगा तो ही वो सारा संक्रमित होकर सम्यक प्रकृति में मिलेगा। सम्यक प्रकृति के अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने पर नरकायु के बंध के वश से, ऑलरेडी उसने पहले नरकायु का बंध किया था, नारकियों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, यानी वो अंतिम समय। हाँ, छह नरकों में नहीं है ये बात, सातवीं पुस्तक में आप देख रहे हैं। हाँ देखो, प्रथमादि छह पृथ्वियों में गुणित कर्मांशिक विधि से आए हुए नरक में उत्पन्न होने के, वो तो हमने देखा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के लिए है। हाँ हाँ, उनके लिए प्रथमादि छह, इन्हें प्रथम को नहीं लेना, वहाँ द्वितीय आदि छह ले। हाँ, सातवें में यानी द्वितीय आदि नरकों में ऐसा कह सकते हम।
हाँ,
ये जो बात है वो द्वितीय आदि नरकों में होगी, अभी जो हमने देखी ना सम्यक मिथ्यात्व के लिए। सातवें नरक में तो अंत में उसको औक्षमिक समय तो प्राप्त करना है गुणित कर्मांशिक के लिए, और पहले नरकों में गुणित कर्मांशिक से आया है, और शुरू में उसने प्रथम औक्षम प्राप्त किया, और जब प्रथम औक्षम प्राप्त करके वो संक्रमित करेगा तब उसको ले लेना, यानी हर एक नरक में वो अलग अलग जानकर समझना चाहिए। देखो ये पहले से छठे नरक तक के लिए, पहले से छठवें नरक तक के लिए यहाँ बताया है अलग से, पहले 117 पेज छठवीं पुस्तक, एक सौ पच्चीस नंबर का जो पॉइंट है पैराग्राफ, उसकी चौथी लाइन, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की मिला।
हाँ,
सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति किसके होती है? पहले से छठे नरक के लिए बताए अलग से। वही जीव अंतर्मूर्त काल के द्वारा, वही जीव ने कौन सा अभी जो ऊपर लिया है, गुणित कर्मांशिक वाला जीव सातवें नरक से निकलकर संख्यात भव तिर्यंश के धारण कर फिर अपने योग्य नरक में उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहले से छठे नरक तक है ना, यानी सातवें में गुणित कर्मांशिक हुआ, फिर तिर्यंश में गया, फिर यथा योग्य पहले से लेकर छठे नरक तक कहीं अपने अपने नरक में उत्पन्न हुआ, यानी पहले वो गुणित कर्मांशिक से आया हुआ जीव लिया। और वही जीव अंतर्मूर्त के काल के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त करे, सातवें नरक में गुणित कर्मांशिक था, वहां से तिर्यंश में आया, वहां से पहले से छठे नरक में कहीं उत्पन्न हुआ है और अंतर्मूर्त में सम्यक्त को प्राप्त किया, फिर पूर्ण करने के सबसे उत्कृष्ट काल में
जगन्य गुण संक्रमण,
सबसे जघन्य गुण संक्रमण भागहार के द्वारा, भागहार छोटा तो संक्रमित होने वाला द्रव्य ज्यादा,
और काल बड़ा,
हाँ काल बड़ा, ये संक्रमण का काल बड़ा और भागहार छोटा, भागहार भी अलग अलग होंगे सबके, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्वों को प्रदेशों से पूर देने संक्रमित कर दे, उसके बाद तीनों प्रकृतियों में से किसी एक का उदय होगा, वही यानी उपशम सम्यक्तों का अंतिम समय, उस उपशम सम्यक दृष्टि के अंतिम समय में उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, एक से छह सबकी, वहां कृतकृत्य वेदक को नहीं लिया है,
तो कलम ने कृतकृत्य वेदक लिखा है,
यहाँ जो लिखा है ना, वहां सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, ये तो मात्र पहले नरक में घटित होगा, और जो कृतकृत्य नहीं है उसके लिए जो फिर गुणित कर्मांशिक आया है पहले नरक में उत्पन्न हुआ है और उसने प्रथम उपशम समय को प्राप्त किया है और फिर उसके अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होगा। परंतु ये कृतकृत्य वाला भी गुणित कर्मांशिक वाला ही लेना था,
पहले नरक में समय
और अन्यत्र गुणित कर्मांशिक आया है और प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त किया। एक अंतर्मूर्त में प्रथम उपशम प्राप्त किया, पहले से छठे या दूसरे से छठे भी लिखो,
और पहले
करने के गुणित कर्मांशिक अंत समय में हो जाता उसके बदले आयु बंद के पहले प्रथम उपशम समय तो प्राप्त किया, क्योंकि उस बाकी सभी विधि उसकी गुणित कर्मांशिक भी अभी और थोड़ा संकलेश हो जाता तो और ज्यादा उसके कर्म आते, उसके बदले उसने समय तो प्राप्त किया। तथा इनकी उद्वेलना में अभी हम सातवें पुस्तक में आते हैं, ग्यारहवें पृष्ठ तीन तीन छह तीन नौवीं लाइन, इनकी उद्वेलना में, इनके ने सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में एक समय शेष रहने पर जो उक्त नरकों में उत्पन्न होता है उनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति एक समय देखी जाती है। नरकों में अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति एक समय के लिए कैसे घटित होगी, उद्वेलना करते करते एक समय बाकी है और नरक में उत्पन्न हुआ तो अनुत्कृष्ट एक समय के लिए, अतः उक्त नरकों में इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। उत्कृष्ट स्थिति अगर अपने अपने नरकों में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कैसे घटित कराएंगे,
सादी मिथ्या दृष्टि,
सादी मिथ्या दृष्टि है वहाँ पर आया है,
साथ आया है और
उत्कृष्ट आयु के साथ आया है सादी मिथ्या दृष्टि ना, फिर जाके वहाँ सम्यक्त्व प्राप्त किया,
वेदक सम्यक्त्व प्राप्त,
वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करके सम्यक्त्व में रखो, सातवें नरक में मिथ्यात्व में भी आया तो भी उसके अनुत्कृष्ट तो रहेगी ही। सातवीं पृथ्वी में अन्य सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य नारकियों में जिस प्रकार घटित करके बतलाए हैं उस प्रकार से घटित कर लेना चाहिए। ने सामान्य नारकी की बात देखी थी, ऐसे यहाँ पर भी लेना है। उत्कृष्ट काल एक समय है ना, जघन्य और उत्कृष्ट क्यों, अंतिम समय में होता है, एक समय के लिए उत्कृष्ट होगा फिर वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा। मात्र जिन प्रकृतियों में कुछ विशेषता है उसका स्मरण कर, कहा तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति जो गुणित कर्मांशिक जीव के यहाँ उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही होती है, यानी पहले नरक सातवें नरक में गुणित कर्मांशिक करके फिर तिर्यंश का भोग करके फिर नरक में उत्पन्न हुआ है और यहाँ पर वो उत्पन्न होने के पहले समय में होती है।
पुरुष वाला जीव कौन सा लेने का,
प्रदेश विभक्ति की बात है, उसका उदय की बात
नहीं, नहीं। पुरुष की उत्कृष्ट विभक्ति वाला जीव कहाँ से आया हुआ लेता है?
देखो पहले गुणित कर्मांशिक किया था,
हाँ।
अन्य भाव में जाने पर
का तो
प्रतिपक्ष का बंधन,
पुरुष वेद का उत्कृष्ट आपने मनुष्य में देखा,
हाँ।
और वो भी सपना में देखा,
वो उत्कृष्ट वाला नहीं लेना,
नहीं, नहीं, वो तो नहीं ले सकती, इसलिए
गुणित कर्मांशिक वाला उत्कृष्ट लेना है ना। गुणित कर्मांशिक नारकी में किया ना, हमने क्या देखा था वेदों में क्या होता है,
नहीं नपुंसक वेद का तो विशाल में होता है,
नहीं नहीं नरक के बाद जब अन्य गति में चलता है,
हाँ।
तो एक अंतर्मूर तक प्रतिपक्ष का बंध करता है,
नहीं हमने स्त्री वेद का तो तपल्य के असंख्यात
देखा, स्त्री वेद के लिए देखा
और पुरुष वेद का, अरे नपुंसक वेद का हमने ईशान स्वर्ग,
ईशान स्वर्ग में देखा,
तो वहाँ से जो यहाँ पे आएगा उसके पहले समय में होगा। और पुरुष वेद के लिए कौन सा जीव ले सकते हैं,
पढ़ेंगे ना यहाँ पर, तीनों वेदों के उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का स्वामित्व सामान्य नारकियों की तरह होता है। सामान्य नारकियों में देखो नरगति में नारकियों में तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति किसके होती है, पेज नंबर 117 सेकंड लाइन, जो गुणित कर्मांश वाला जीव वेदों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके नारकियों में उत्पन्न हुआ, यानी गुणित कर्मांशिक हमने पहले क्या लिया था, गुणित कर्मांशिक का स्त्री वेद में गया वहां गया के लिए ईशान में गया वगैरह वगैरह, यानी उसके लिए पहली कंडीशन गुणित कर्मांशिक रखना ही है,
हाँ।
उसके उत्पन्न होने के प्रथम समय में वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति होती है।
ये पुरुष वेद के लिए तो क्यों पूछा, क्योंकि पुरुष वेद की उत्कृष्ट हमने वो सपना में देखी,
वो वाला जो कैसे,
नहीं वो तो आएगा ही नहीं, इसीलिए मैंने पूछा
गुणित कर्मांशिक के लिए जो उत्कृष्ट है उसकी बात,
अच्छा
ओग से उत्कृष्ट की बात नहीं ना, हमें आदेश से उत्कृष्ट देख रहे हैं हम, नरकों में उत्कृष्ट किसके होता है तो उनके लिए उत्कृष्ट कौन सा है, वहाँ हम ओग का उत्कृष्ट नहीं ले सकते,
नहीं नहीं वो तो बराबर है,
हाँ।
पर वो जीव कहाँ से आया हुआ लगता पड़ेगा, जो पुरुष वेद की जो उत्कृष्ट करके कहाँ से उत्कृष्ट करके आएगा, जो ईशान स्वर्ग वाला नपुंसक्ति करेगा और पीछे जो नरक में
देखो, ये हम हर एक की अभी मार्गणा के बदले हम डायरेक्ट लेते हैं, निकालना उसमें से जो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट प्रदेश वाला सामान्य से जो कथन है उसकी बात हम कहेंगे।
ये 109 पेज पे तो लिखा है, तो सपत श्रेणी में ही पुरुष वेद का उत्कृष्ट साबित
हो गया, वो है परंतु
अभी आदेश से
देखो पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म किसके होता है, अभी क्षपणा के पहले कहाँ कहाँ किया उसने, पेज नंबर 104 पर पुरुष वेद की पूर्ति उसने पल्लवपम की स्थिति वाले देव में की। देखो
हाँ।
गुणित कर्मांशिक वाला जीव ईशान स्वर्ग में नपुसक वेद की पूर्ति करता है, पूर्ति यानी उसका मैक्सिमम करता है, और स्त्री वेद की पूर्ति
पल्ल्य
पल्ल्य यानी बहु भूमि में पल्ले के असंख्या भाग वाली आयु वाले उस वहाँ करता है, और पुरुष वेद की पूर्ति कहाँ की
सम्यक्त्व प्राप्त किया और
सम्यक्त्व प्राप्त करके मरा और पल्लवपम की स्थिति वाला देव हुआ, सम्यक्त्व के साथ आया है तो उसने पुरुष वेद ही बांधा है लगातार,
वहाँ पुरुष वेद की पूर्ति।
अब ऐसा जीव यथा योग्य काल में नरक में आएगा
तभी
तो उसके पहले समय में उत्कृष्ट होगा वेदों का। देखो यहाँ क्या लिखा है, तीनों वेदों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति तो गुणित कर्मांशिक जीव के यहाँ उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही होती है, यानी एक समय के लिए होती है ना, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इस एक समय को सातवें नरक नरक की चाहिए नरक की हुआ है नरक की जघन्य स्थिति में से कम कर देने पर यहाँ उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल पूरा 22 सागर प्राप्त होता है, और इसका सातवें नरक के लिए, सातवें नरक का पहले गुणित कर्मांशिक से आया फिर दोबारा सातवें नरक में उत्पन्न हुआ है, या ऐसे भी सातवें नरक में आया है, वो अनुत्कृष्ट का काल कितना होता है जघन्य स्थिति में से एक समय कम कर दो, पहले समय में उत्कृष्ट था फिर जघन्य हुआ तो जघन्य कितना होगा 22 सागर, और एक समय में से एक समय घटा दो तो 22 सागर हो जाएगा, और इसका उत्कृष्ट काल यहाँ की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है 33 सागर, सातवें नरक के लिए ये कथन है। यहाँ अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामित्व ओग के समान है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पूरा 33 सागर कहा है। अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त कैसे घटित करेंगे, सातवें नर हावी संयुना के बाद। यहाँ अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं बनता, इसके कारण का निर्देश मूल में ही किया है, क्यों नहीं बनता,
सासादन में मरण नहीं,
सासादन में मरण नहीं होता यहाँ पर, और ना ही कि मरने के पहले प्रथम उपशम समय तो होगा, ये तो नारकियों की बात हमने कल भी देखी थी और विशेषार्थ में दोबारा देखी। अब आवेश में तिर्यंच गति में देखेंगे, तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 9 कषाय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, कौन सा समय होगा,
पहला समय जो सातवें नरक,
देखो सातवें नरक में जो गुणित कर्मांशिक ने उत्कृष्ट किया है वहां से नियम से तिर्यंच में जन्मेगा, जन्म के पहले समय में उसका उत्कृष्ट होगा। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है, उसी को क्षुद्र भव ग्रहण कहते हैं, क्षुल्लक का यानी अनुत्कृष्ट के साथ ही जन्मा है और उसकी जघन्य जो स्थिति है क्षुद्र भव की उसको लेना है। हाँ क्षुद्र छोटा, मराठी में तो हम ऐसे क्षुल्लक है क्या, ये बहुत इसका कारण क्या है, बहुत क्षुल्लक कारण है, मराठी में तो हम आम तौर पर उसको यूज भी करते
हैं
शब्द क्षुल्लक, शब्द हम
गुजराती में भी यूज करते
हैं, क्षुल्लक यानी शुद्र, शुद्र हाँ वो क्षुल्लक नहीं, ये क्षुल्लक यानी तुच्छ है ऐसे वो अलग। तो कहते हैं इसे एक समय क्यों नहीं कहते है? समाधान नहीं, क्योंकि नारकियों में से निकले हुए जीव का अनंतर समय में अपर्याप्त जीवों में उत्पाद नहीं होता। क्या कहते हैं एक समय के लिए इसको भी क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं होता अपर्याप्त में?
नारकियों में से अपर्याप्त उत्पन्न नहीं होता, पर्याप्त नाम कर लो।
वो तो बनते ही नहीं,
नहीं है पर्याप्त नाम
कौन कौन से नहीं बनते? नारकियों के कौन कौन से प्रकृतियां नहीं बनते?
अपर्याप्त
सूक्ष्म भी नहीं, साधारण भी नहीं, अपर्याप्त में एक इंद्रिय नहीं, तीन इंद्रिय नहीं, चतुर इंद्रिय नहीं, देव नहीं, नरक नहीं, देव गति नहीं, देव गति
मनुष्य गति भी
मनुष्य बांधेगा ना नारकियों
छठे वाला बांधे सातवें वाला नहीं,
देव नहीं बांधता है और सभी बांधेगी ना
बांधेगा।
आयु की बात नहीं चल रही, मनुष्य गति की बात चल रही, गति तो बांधेगा वो समय बांधेगा। तो नारके ना देवगति बांधता है, देवगत्यान पूरी नरगति नरगत्यान ये तो बांधेगा ही नहीं। वो कौन सी सत्ता में होगी यहाँ तो वहाँ क्यों उत्पन्न नहीं होता उसकी बात चल रही है। पहले बंधे हुए सत्ता में पड़ी है, परंतु यहाँ अपर्याप्त बांधेगा तो अपर्याप्त में उत्पन्न होगा। वो
ये अपर्याप्त सत्ता में पड़ी रहती है? नहीं
पड़ी रहती है,
नहीं नहीं।
तेरा का जो क्षय होता है नवे गुणस्थान में, तेरा में क्या है? ये आए ही रहता है, सत्ता में पड़ी रहती है। देखो सूक्ष्म मिथ्यात्व की जो बंध विच्छित है ना उसमें अभी जाने उसकी जाने के बाद सूक्ष्म नारकी कहाँ कहाँ नहीं उत्पन्न होता ऐसा पहले सोचो। निगोद में तो नहीं होगा, अपर्याप्तों में नहीं होगा,
सत्ता की
एक इंद्रिय नहीं, द्विंद्रिय नहीं, तीन इंद्रिय नहीं, चतुर इंद्रिय नहीं, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं बांधेगा? तो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, जाति नहीं बांधेगा, स्थावर नाम कर्म नहीं बांधेगा, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण को नहीं बांधेगा, देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं बांधेगा, नरगति नरगत्यानुपूर्वी को नहीं बांधेगा, वो बनती ही नहीं।
ये बहुत पेज खराब हो गया
यानी वो हाँ मेरा चल रहा है ना कर्मकांड का ट्रांसलेशन नहीं पर उसमें बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस से बात नहीं। कर्मकांड का 330 पेजेस पूरे हो गए ट्रांसलेशन, वहाँ भी मैं लेके गई थी, 6-6 घंटे तो हमारे प्रवचन चलते थे और वहाँ पर मैंने 300 पेज तक हमारा ट्रांसलेशन किया, यहाँ मैंने 100 पेजेस करके गई थी, 200 पेजेस का हुआ वहाँ पर। अरे वहाँ तो खाना खिलाने वाले और ही थे ना हाँ देखो देखो तो ये अपर्याप्त जीवों में उनका उत्पाद नहीं होता। नीचे अनंतानुबंधी चतुष्क वो भी दिख नहीं रहा है,
ये अपर्याप्त की तो सत्ता की विच्छुति 14वें गुण स्थान में होती है। सत्ता की विच्छुति सत्ता की सत्ता में
सत्ता वाला वो अपर्याप्त वहाँ है अभी
14वें गुण स्थान के
अपर्याप्त इसलिए
छठे भाग में
14वें का छठा भाग कहाँ?
नहीं अयोगी के द्विचरम समय में।
हाँ द्विचरम समय का
सॉरी,
बाकी जो
एकेंद्रीय वाला है ना वो 8वें गुणस्थान में,
नवे में जाते हैं ना सारे 13 प्रकृतियां नवे में चली जाती है सत्ता में से। देखो अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है, नारकियों में चल रही, नहीं तिरंज गति में बात चल रही, क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी चतुष्कर स्त्री वेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का जगन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो यहाँ पर जा हुआ है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है।
ये स्त्रीवेद का भी एक समय हो सकता है,
अनुत्कृष्ट का एक समय लिया, यानी उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट लिया होगा।
अच्छा, और पीछे मरण हो जाता है, पल्य के लालियो आयु वाले में उत्कृष्ट किया और एक समय में मरण होगा, ऐसे ही होगा ना स्त्रीवेद का?
आप पीछे लिखा है स्त्रीवेद की उत्कृष्ट की उसने
और एक समय,
और एक
के
समय
लिए
तक तिरंज में रहा
और पीछे मरण हो गया वही,
क्योंकि हमने देखा ना स्त्रीवेद के उत्कृष्ट किया कहाँ किया,
पल्य,
तो पल्य को उनके आयु वाले, तो उसने लास्ट समय और भी रहा तिरंज में, तो उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो गया, क्योंकि स्त्रीवेदी है वहाँ, तो उसके फिर गया ना उसका उतरा, ज्यादा उत्कृष्ट बंद नहीं किया उसने। इसका विशेषांक पढ़ेंगे फिर हम। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनंतानुबंधी का अनुत्कृष्ट एक समय कैसे होगा?
संयोजना की और पीछे मरण होगा,
वही जो हमने देखा ना सासाधन में आया, पहले विसंयोजना की थी फिर सासाधन में आया, एक समय में अनुत्कृष्ट रहा और मरकर सासाधन में मरकर कहाँ जाएगा? नरक में?
नहीं नहीं, सासाधन
कहीं पर भी जाएगा,
नरक में नहीं जाएगा,
नरक को छोड़कर अन्य तीन में कहीं पर भी जा सकता है। लास्ट लाइन सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की,
या फिर इससे हो सकता है जो सभ्य दृष्टि है वो मिथ्यात्व में गया, एक समय के लिए मिथ्यात्व में रहा और मरण हो गया।
एक समय में मिथ्यात्व में नहीं मरण होगा,
नहीं होगा ना,
ऐसा कुछ हमने पहले देखा था,
अंतर्भूत रहने का पश्चात ही होगा।
नहीं नहीं, यहाँ पर जाते ही मरण नहीं होता है, देखो सम्यक और जैसे सासाधन में होता है ना वैसे वहाँ पर
नहीं होता
है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब यहाँ हम सोचेंगे फिर विशेषांक में पढ़ेंगे, कुछ गलत होगा तो सुधारेंगे। यहाँ कैसे होगा उत्कृष्ट?
जो नरक से उत्पन्न हुआ है,
गुणित कर्मांशिक वाला नरक से आया है, उसने मिथ्यात्व की उत्कृष्ट करके आया है और यहाँ उसने तिरंज में आने के बाद प्रथम मोक्षण सम्यक्त किया, यह था युद्ध काल। अभी सातवें नरक का वाला उस भाव में तो नहीं, तो उसके बीच में
दो तीन भाव
यथायोग्य चले जाएंगे, ख्याल में है ना? बस सातवें नरक से निकलकर जो भाव मिलता है तिरंज का, उसमें उसको सम्यक्त हो नहीं सकता, फिर वहां तो उसका अंतिम भाव लिया था त्रस पर्याय का, फिर एक इंद्रिय में चला जाएगा, फिर वहां से फिर तिरंज में था। अभी यहाँ क्या लिखते देखेंगे हम, ये उपशम सम्यक्त के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट होगा, क्योंकि गुणित कर्मांशिक है, उसने गुण संक्रमण किया है, फिर विद्या संक्रमण भी होगा और उपशम सम्यक्त काल के अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होगी। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है,
उद्वेल्ला वाला एक समय,
परंतु ऐसा लेना अन्य गति में से तिरंज में आया है, अपने मार्गना शुरू होना चाहिए उस समय, अन्य तीनों गति में से उद्वेलना करते करते यहाँ पर आया है, तिरंज गति में आकर एक समय के लिए तिरंज रहा, यानी तिरंज में
रहा
सत्ता
और एक ही समय के लिए सत्ता,
और उत्कृष्ट काल पल्य का असंख्यात वा भाग अधिक तीन पल्य प्रमाण है। ये कैसे गठित करेंगे?
तीन पल्य तो ले लिया, उसके पहले पल्य का असंख्यात वा भाग लिया।
हाँ 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 तिर्यंच से तिर्यंच में जाना चाहिए तो मिथ्या तो में जाएगा।
28 की सत्ता वाला जो तिर्यंच से तिर्यंच
की सत्ता वाला
पल्ले के असंख्या से पास तो
28 की सत्ता वाला तिर्यंच है
पल्ले के असंख्या से पास
पहले उसके पहले वहाँ जाने के पहले वो तो तिर्यंच में ही था
और पीछे
उसने तिर्यंच में रहते हुए यानी कभी जो संगी पंचेनी था उसने सम्यक तो प्राप्त किया
तिर्यंच पे चला
फिर मरकर वो मिथ्यात्व में मरकर ने मिथ्यात्व में चला गया
पल्ले के असंख्या
फिर पल्ले के असंख्या भाग तक तिर्यंच के ही बहु करता रहा मिथ्यात्व में और फिर जाके अंत में मिथ्यात्व के साथ ही उद्वेलना पहले पूरी करने के पहले पहले भोगभूमि में गया
सम्यक तो प्राप्त किया
और वहां जाकर उसने फिर
सम्यक
तो प्राप्त किया। अब यहाँ क्या लिखते देखेंगे विशेषार्थ यहाँ सब कर्मों की उत्कृष्ट एक करो बराबर है क्या लक ल दिखता है उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति अपने अपने स्वामित्व के अनुसार एक समय के लिए होती है इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। आगे की मार्गणाओं में भी इसी प्रकार जानना चाहिए इसलिए आगे सब कर्मों की मात्र अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के काल का स्पष्टीकरण करेंगे। तिर्यंचों में जघन्य आयु शुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है भव हुआ है भव ग्रहण प्रमाण है और काय स्थिति अनंत काल प्रमाण है। ये काय स्थिति क्या होती है एक होती है भव स्थिति और एक होती है काय स्थिति। भव स्थिति ने एक आयु और काय स्थिति ने उसी पर्याय में रहने का लगातार काल। तो तिर्यंचों में तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है इसलिए इनमें 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अनंत काल कहा है अनुत्कृष्ट के लिए। मात्र यह अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय भी बन जाता है इसलिए इसका अलग से निर्देश किया है। जो स्त्रीवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करने के बाद हमने देखा था ना कैसे करता है तो यथाविधि उत्पन्न होकर फिर पल्ले के असंख्यात में भाग आयु वाले भोग भूमि में उत्पन्न हुआ है। देखो जो स्त्रीवेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करने के बाद एक समय तक तिर्यंचों में रहकर देव हो जाता है उसके स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय बन जाता है और जिस तिर्यंच ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके तिर्यंच पर्याय में रहने का काल एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है यानी वो भी विसर्जना करके प्राप्त हुआ है ने वो प्रथम उपशम सम्यक और विसर्जना भी भव के अंत में की है। ऐसा नहीं कि शुरू में विसर्जना करे और बाद में लास्ट में जाके उस प्रथम उपशम में यानी सासाधन में आ जाए क्योंकि सासाधन में जाने वाला तो प्रथम उपशम ही होना चाहिए। समझ में है मैं क्या कहना चाह रही भव के शुरू में अनंतानुबंधी की विसर्जना कर भी ली तो उसका उपशम समय को तो अंतर्मूर्त तक ही टिकता है बाद में विषय योजना में काल बहुत काल उसने बिताया 24 की सत्ता वाला तो क्या अभी वो सासादन में आ सकता
नहीं।
है उपशम वाला ही सासादन में आता है शोपशम वाला तो मिथ्या तो मिल
जाता है
एक समय के इसलिए मैं क्या कहती हूँ ये जो उपशम सम्यक और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करानी है वो भव के अंत में ही करानी है। किसी ने शुरू में की तो वो कुछ काम की नहीं है
नहीं एक समय के लिए नहीं बनी
जिस तिर्यंच ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करके तिर्यंच पर्याय में रहने का काल एक समय शेष रहने पर सासादन गुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है। किससे?
अनंतानुबंधी
से। उसके अनंतानुबंधी चतुष्क की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय बन जाता है। तिर्यंचों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा बन जाता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। परंतु उसको अन्य गति से यहाँ लाना चाहिए, नहीं तो तिर्यंच में पहले भी था अभी भी है
तो
अलग यानी ज्यादा समय हो जाएगा। सम्यक्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कृतकृत्य वेदक सम्यक्व की अपेक्षा भी बन जाता है। अनुत्कृष्ट है उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, एक समय का जो बनेगा
एक समय के लिए आया हो
वो अनुत्कृष्ट होगा, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। तथा जो तिर्यंच पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना करते हुए अंत में तीन पल्ले की आयु के साथ उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न होते हैं और वहां अधिकतर समय तक सम्यक्व के साथ रहते हुए इनकी सत्ता बनाए रखते हैं, यानी बीच बीच में मिथ्यात्व में भी चले जाए फिर बाद फिर दोबारा
प्राप्त कर लेते
हैं। उनके इस सब काल के भीतर उक्त दोनों प्रकृतियों की सत्ता बनी रहती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग अधिक तीन पल्य कहा है। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में एक कौन से पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक मंजूबेन आपको याद है? पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में किस किस को लेना? हाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्य तिर्यंच अगर लेते हैं तो उसमें सभी एकेंद्रिय से सभी आ जाएंगे। पंचेंद्रियों में तीन लेना है, सामान्य पंचेंद्रिय नहीं है, ऐसा अलग आलाप नहीं
है।
पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्त।
अच्छा लब्धिय पर्याप्त को भी ले,
ऐसे तीन है पंचेंद्रिय त्रिक। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में ऐसा पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही अगर हम लेते हैं तो वहां साम पर्याप्त पर्याप्त दोनों ले लेंगे। तिर्यंचों के जो पांच भेद करते हैं ना उसमें सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, हाँ यानी सामान्य पर्याप्त और योनिमति और लब्धिय पर्याप्त तो सभी सभी के लिए, लब्धिय पर्याप्त एक अलग आलाप है। यानी वो लब्धिय पर्याप्त एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सबके लिए, एक सामान्य पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय पर्याप्त उसमें नपुंसक वेद और पुरुष वेद दोनों ही हो गए ना, और योनिमति।
तो यहाँ लब्धिय पर्याप्त नहीं लेना है, नहीं लेना है लब्धिय पर्याप्त,
पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य में ले लेंगे। यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच इतना ही अगर हम कहेंगे तो उसमें सब आ जाएंगे। त्रिक में पर्याप्त पर्याप्त एक साथ हम कह सकते हैं, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच अगर इतना ही कहें तो, और फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति सामान्य लिया उसमें। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त ऐसा अलग आलाप है, तो चौथा हो जाएगा। अब यहाँ क्या देखते देखें, यहाँ किस अपेक्षा से विभाजन किया हम देखेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल, तिर्यंचो में क्षुल्लक बहुग्रहण प्रमाण और शेष दो में अंतर्मूर्त है। यहाँ तिर्यंच यानी सामान्य लिए, सामान्य में तो क्षुल्लक बहुग्रहण,
हाँ,
और शेष दो में अंतर्मूर्त है।
अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त है,
देखो अनुत्कृष्ट का जघन्य काल, क्यों जघन्य काल कैसा लेना है?
तो अंतर्मूर्त आगे वाला ही है,
अनुत्कृष्ट से ही जन्मा है
और अंतर्मूर्त आगे वाला ही है,
अंतर्मूर्त आगे वाला
है।
पहले में तिर्यंच सामान्य लिया है, किंतु अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय और सबका उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्व अधिक तीन पल्य है। पंचेंद्रियों में घटित करना है ना, पंचेंद्रिय जब कहेंगे तो तीनों वेद वाले उसमें आ जाएंगे, तो उसके उत्कृष्ट स्थिति लेना, काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्व, पंचेंद्रिय कहेंगे तो उसमें संगी असंगी दोनों आ जाएगी।
95
तो कितने हो जाएंगे?
95
पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग स्त्री वेद के समान है,
एक समय के लिए,
हाँ
अनुत्कृष्ट,
अनुत्कृष्ट भी उसमें गुदवेलना की अपेक्षा
और कृतकृति वेदक की अपेक्षा सम्यक कृति वेद,
सम्यक कृति वेद। विशेषार्थ पंचेन्द्रिय तिर्यंचों की जघन्य स्थिति, क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और शेष दो की अंतर्मूर्त है। तो पंचेन्द्रिय त्रिक में पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, योनिमति और पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धिया पर्याप्त, ऐसे लेंगे तो ये होगा। पंचेन्द्रिय लेना ना, पंचेन्द्रिय
सामान्य योनिमति,
पंचेन्द्रिय सामान्य नहीं लेना, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्त। हाँ तीन है हमारे पास त्रिक में, तीन हो गए, कौन कौन से तीन है? सामान्य नहीं, लब्धिय पर्याप्त है त्रिक में, एक लब्धिय पर्याप्त का है, तो इसके लिए अंतर क्षुद्र भव लिया, और बाकी जो दो है पर्याप्त और योनिमत, उसके लिए अंतर्मूर्त लिया। देखो पंचेंद्रिय के, पंचेंद्रिय के तीन भेद कौन से है? पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति और पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धिय पर्याप्त। विशेषार्थ देखते हैं, पंचेन्द्रिय तिर्यंचों की जघन्य स्थिति, क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और शेष दो की अंतर्मूर्त है। त्रिक में दो, अन्य दो यानी कौन से है? पर्याप्त और योनिमति, तथा सबकी काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्व अधिक तीन पल्य है। सबके ने अभी पंचेन्द्रिय त्रिक इन जनरल उन्होंने बात की, त्रिक कहेंगे तो सामान्य हो गया उसका, इसलिए इनमें 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल क्रम से क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और अंतर्मूर्त कहा है, तथा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्व अधिक तीन पल्य कहा है, उसमें रहने का उत्कृष्ट काल। ये गुणित वाला नहीं आया है, अन्य अनुत्कृष्ट वाला आया है। मात्र अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सामान्य तिर्यंचों के समान यहाँ भी बन जाती है। देखो यहाँ भी लिखा है ना, अब तक जो हम देख रहे थे तिर्यंच गति में तिर्यंचों में, वहाँ सामान्य तिर्यंचों की बात थी, उसमें पंचेंद्रिय भी इंक्लूडेड थे, और पंचेंद्रिय तीरियन चौंके तीन भेद करे, आप ख्याल में ना, तीरियन गति में ये दूसरा अलग से उन्होंने लिया है उसका भाग। जैसे नरक गति में पहले सामान्य से नारकों की बात की, फिर सातवें नरक के लिए अलग बताया, ऊपर के नरकों में अलग बताया, ऐसे यहाँ सामान्य तीरियन की पहले बात बताई, अब पंचेंद्रिय त्रिक की बात कर रहे
हैं। यहाँ पे ये पंचेंद्रिय त्रिक में अनंतानुबंधी चतुष्टी एक समय के लिए कैसे होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त जीव लिया तो उसके
पंचेंद्रिय त्रिक ले लिया ना, तो उसमें सभी पंचेंद्रिय आ गए।
अच्छा, वहाँ सामान्य की अपेक्षा,
देखो जैसे पंचेंद्रिय हम कहेंगे तीरियन, तो उसमें संगी असंगी है, तो उसमें कैसे घटित करना, जहाँ घटित होता है वो उसमें है कि नहीं, इतना देखना। जैसे हम पंचेंद्रिय कहेंगे केवल पंचेंद्रिय, तो चारों गति के आए जी, पंचेंद्रिय तीरियंश कहेंगे तो संगी असंगी दोनों आ जाए, तो जिसमें भी घटित होता है वो उसमें है ना, तो हम कहेंगे ये इसमें घटित होता है, तो पंचेंद्रिय तीरियंशों में संगियों में घटित होता है, तो फिर हम पंचेंद्रिय तीरियंशों के लिए वो कहेंगे वो उसमें है। अनंतानुबंधी क्यों कैसे लेना, अनंतानुबंधी चतुष्क और स्त्री वेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सामान्य तिरियंचों के समान यहाँ भी बन जाती है,
एक समय
यानी वो विषय योजना किया है और फिर एक समय में साधन में आ गया,
तो स्त्री वेद में उत्कृष्ट करके एक समय के पश्चात
उत्कृष्ट करके
एक समय
तक रहा वहाँ पर, अनुत्कृष्ट हो गया और फिर मर गया, मर के देव में उत्पन्न हुआ, इसलिए यहाँ इसका जगन्य काल एक समय कहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्या सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की प्ररूपणा त्रिवेद के समान घटित हो जाती है, यानी एक समय घटित हो जाता है, इसलिए उसे उसकी प्ररूपणा के समान जानने की सूचना की है। पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों में पहले पंचेंद्रिय त्रिक सबको एक साथ लिया था, अब मात्र अपर्याप्तों की बात अलग देख रहे हैं। 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब डायरेक्ट तो कोई इसमें से नरक में से तो नहीं आएगा, बीच में अन्य भव करके इसमें आएगा, तो पहले समय में घटित होगा उसका उत्कृष्ट। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण, इसी का अर्थ पहले समय में उत्कृष्ट उनके लिए उत्कृष्ट हो, भोग से उत्कृष्ट नहीं, मार्गणा का उत्कृष्ट, उस एक समय को कम कर दो तो जितना रह गया है क्षुल्लक भव ग्रहण उतना उसका लेना है। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त यानी उनकी उत्कृष्ट आयु, शुद्र जिसको हम लब्धि अपर्याप्त कहते हैं उसमें भी आयु के वेरिएशंस है जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, याद है कुछ? लब्धि अपर्याप्तों में हाँ उसमें भी हम अंतर्मुट कहेंगे, अधिक भव करेंगे लगातार लब्धि अपर्याप्त तो लेना यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रही हूँ आयु में भी जगन्य से उत्कृष्ट तक वेरिएशंस है, यहाँ लगातार अपर्याप्त में रहने का काल लेना है, ये अंतर्मूर्त जो लिया ना यहाँ पर उत्कृष्ट काल जो अंतर्मूर्त है कितने होते हैं, कितने भोग हो गए,
66 नहीं 64,
अपना क्राइटेरिया कौन सा है, मार्गणा कौन सी चल रही है,
पंचेंद्रिय अपर्याप्त नहीं पंचेंद्रिय अपर्याप्त है, सॉरी
पंचेंद्रिय अपर्याप्त होंगे कितने भोग होते हैं,
नहीं 16
हो गए, मनुष्य के 8 नहीं लेना, पंचेंद्रिय तिरियन चल रहे संगी के 8 और असंगी के 8, और एक ही जो क्षुद्र भव जिसको हम कहेंगे ना लब्धि अपर्याप्त का एक भव कहीं पर भी हो तो उसमें आयु जितनी बांध कर आया है मिनिमम आयु बांध कर आया है
पतली बांध
और कोई अधिक से अधिक आयु बांध कर है उसमें भी वेरिएशंस है, उसमें भी
तबलीघात
होता है, हमने देखा है। जो मिनिमम बांधी उसका नहीं होता है,
हमें ज्यादा
आगे थोड़ी ज्यादा बांधी है उसका तबलीघात होकर जो मिनिमम बांधी थी उससे भी कम हो जाती आई। नहीं समझे, हमने देखा मान लेते 15 समय बांध कर आया है और 15 समय से लेकर 60 समय उन तक उसके अलग अलग आयु के वेरिएशन है, तो किसी ने 45 समय बांध के आया है तो उसके घटकर अभी 12 13 14 समय हो जाएगी, तो उसको हमने जीवनीय आयु कहा और ये बंधनीय आयु यानी उसको क्षुद्रभव ग्रहण, क्षुद्रभव उसको
मिनिमम
मिनिमम उसका जो भव है उसको क्षुद्रभव कहते हैं। देखो लगातार कोई जीव अपर्याप्तों में जन्म लेता रहे, जन्म मरण जन्म मरण, तो कितने होते हैं सभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के भव 66,336, उसमें से एकेंद्रियों के हैं 66,132, द्विंद्रिय के 80, तीन्द्रिय के 60, चतुरिंद्रिय के 40 और पंचेंद्रियों के 24, उसमें से 8 मनुष्यों के हैं, 8 असंगी के हैं और 8 संगी तिरेंद्रिय। मनुष्यों को निकालेंगे तो बाकी पंचेंद्रिय तिरेंद्रियों के 8 और 8 16 वो मिलेंगे, सब मिलकर भी अंतर्मूर्त होगा। सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व का भंग इसी प्रकार है, इतनी विशेषता है, इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश युवक्ति का जघन्यकाल एक समय है,
उद्वेलना पे।
क्योंकि उद्वेलना करता है और उद्वेलना चल रही है तो पूरे भव तक उसके रही है ना, तो उत्कृष्ट कितना एक भव या अंतर्मूर्त प्रमाण हम करेंगे उसको लगातार जितने भव है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त जीवों में जानना चाहिए विशेषार्थ, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का एक समय काल कम कर देने पर यहाँ अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल प्राप्त होता है और पंचेन्द्रिय तिरेंच अपर्याप्तकों की काय स्थिति, काय स्थिति ने लगातार उसमें रहने का काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, इसलिए इन जीवों में 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट का अंतर्मूल प्रमाण कहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसी प्रकार जानने की सूचना की है। मात्र इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का उद्वेलना की अपेक्षा एक समय काल भी प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त विभक्ति का जघन्य काल अलग से एक समय कहा है। मनुष्य अपर्याप्तकों में यह काल प्ररूपणा अविकल बन जाती है, अविकल ने वैसे ही जैसे अभी हमने पंचेंद्रिय तिरेंच लब्धि अपर्याप्त में देखा, इसलिए उनमें पंचेंद्रिय तिरेंच अपर्याप्तकों के समान जानने की सूचना की है। अब मनुष्यत्रिक में, अब ये मनुष्यत्रिक कौन से हैं? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं। या त्रिक लेना है तो सामान्य मनुष्यों को अलग निकालो, क्योंकि त्रिक कहने से सामान्य हो गया, त्रिक्य ने सबको एक साथ लिया यानी वो सामान्य हो गया ना, उसमें हमने तीनों इंक्लूड कर दिए। मनुष्य अपर्याप्त भी एक है ना, मनुष्य अपर्याप्त। जब देखो मनुष्य त्रिक कहेंगे उसी का अर्थ सामान्य मनुष्य,
तो लब्धि अपर्याप्त
तीन कौन से भेद है? त्रिक कहने से तीनों को इकट्ठा कर दिया, तो मनुष्य त्रिक को या सामान्य मनुष्य को एक ही बात,
तो यहाँ पे पर्याप्त
और भेद करके बताना है तो
मनुष्य
पर्याप्त तो उसमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद वालों को लेना, पर्याप्त मनुष्य
मनुष्यनी को अलग लेना,
मनुष्यनी में तो अकेले स्त्री वेद वाले
लेना पर्याप्त
और लब्धि अपर्याप्त वाले अलग लेना। तो मनुष्य त्रिक में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। पहला समय गुणित कर्मोशिक से आया हुआ, सातवें नरक से यथायोग्य काल में मनुष्य में उत्पन्न हुआ तो पहले समय में उसका उत्कृष्ट होगा।
संयुक्त का कृत प्रतिवेदक को, संयुक्त का कृत प्रतिवेदक को
28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कहीं पर भी हो
एक समय के लिए
यही बात होती है। पहले समय में ऐसा नहीं लेना, एक समय के लिए है, जहाँ कहीं हो। अभी हम मनुष्यों में अगर घटित करते हैं, इन जनरल मनुष्यों में, तो क्षपणा वाले की भी होगा ना, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य जब सम्यक प्रकृति रूप होता है,
एक समय के लिए होता है,
होता है एक समय के लिए। कहाँ होता है वो यहाँ स्वामित्व का प्रकरण नहीं, कितने काल तक होता है तो एक समय के लिए। हम वो किसके होता है वो याद करते हैं, इसलिए बार बार स्वामित्व को देखते हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भोग्रहण प्रमाण है। अनुत्कृष्ट का कैसे घटित होगा?
उत्कृष्ट
पहले समय में उत्कृष्ट लेना, जो गुणित कर्मोशिक से आया है, टीवीएंस में कुछ एक दो बहु गीता करके मनुष्य अपर्याप्त में आया, ऐसा जीव लेना। और एक समय कम अंतर्मूर्त प्रमाण है। एक समय कम अंतर्मूर्त मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं के लिए। उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है। अपनी अपनी काय स्थिति जो है लब्धि अपर्याप्त के लिए अंतर्मूर्त
पर्याप्त के लिए
और मनुष्य पर्याप्तों के लिए
23+3 पर्याप्त
काय स्थिति
23 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले ना।
देखो मनुष्य पर्याप्त कहते तो स्त्री वेदी वाले को नहीं लेना है।
अच्छा तो 15
तो प्लस पुरुष के 8 नपुंसक के 8
और 3 पल्ले वाला है,
यानी यहाँ 16 हो गए ना, 16 32 के बदले 29 सॉरी 31
नहीं 32 यहाँ पे अपर्याप्त
अपर्याप्त लेना ही नहीं।
15+3 पल्ले
15+3 पल्ले
और मनुष्य के लिए 7+3 पल्ले
15+3 पल्ले और मनुष्य
7+3 पल्ले
7+3 पल्ले और अपर्याप्त में तो अंतर्मूर्त।
मनुष्य त्रिक में आ जाएगा ना,
हाँ। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष् और स्त्रीवेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। सम्यक समय मिथ्यात्व में तो हम उद्वेल ना लेंगे,
अनंतानुबंधी में सासा जन्म होता है
या वहाँ तो सम्यक के लिए कृतकृत्य वेदक का, परंतु फिर वो मनुष्य से मनुष्य रहता है वो घटित नहीं होगा। तिरियंज में घटित हो सकता था, नहीं समझे? कृतकृत्य वेदक तिरियंज में एक समय घटित होता है, मनुष्य में क्यों नहीं होगा? मनुष्य का मनुष्य ही रहता है,
अंतर्मूर्त घटित होगा वहाँ पे अनुत्कृष्ट का, अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त हो जाएगा।
किसमें?
सम्यक तत्व, सम्यक या सम्यक विद्यात्व में
अंतर्मूर्त घटित होगा, एक समय वो घटित
एक सही नहीं होगा,
होता है ना, पर पहले भी मनुष्य था बाद में भी मनुष्य हुआ उसके, ऐसा होगा पहले मनुष्य नहीं था उसने एक समय को प्राप्त किया फिर पर्याप्त मनुष्य हुआ बहुभूमि का,
मनुष्य में हो जाएगा,
मनुष्य में से मनुष्य पर्याप्त में आया। नहीं नहीं पर ये मनुष्य में तो सारे भाव होते हैं,
ये तो भाववेद की बात है ना,
भाववेद वाला है सारा वो क्षय के,
तो वहाँ पे एक समय हो जाएगा,
बिल्कुल होगा मनुष्य में से एक क्षय एक किया था। हाँ ये हमने वहाँ बहुत सोचा था कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ।
दो पांचवी पुस्तक था मेरे को,
मुझे याद नहीं कहा मगर ये बात अपनी आई थी, जगन ने कहा एक समय है
मनुष्य ने जो कृत प्रतिवेदक
तथा चार संज्वलन और पुरुष वेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्यकाल अंतर्मूल प्रमाण है। कैसे क्षपणा में जब संक्रमण होता है अन्य कषाय का इसमें
और पीछे अंतर्मूर्त पे
तो उसका उत्कृष्ट हुआ और उत्कृष्ट के बाद एक अंतर्मूर्त में क्षपणा कर दे, वहां उसका अंतर्मूर्त होता है। यानी वहां उनका तो अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त क्षपणा में होगा, किसमें
पुरुष वेद
और लभ्य पर्याप्तों में भी अंतर्मूर्त होगा क्योंकि उसकी काय स्थिति अंतर्मूर्त है विशेषार्थ सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का एक समय काल अपनी अपनी जगन्य स्थिति में से कम कर देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल सामान्य मनुष्यों में एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण, जब त्रिक कह देते हैं तो उसमें सामान्य कहें, एक साथ त्रिक कहा ना तो सामान्य मनुष्य, और शेष दो प्रकार के मनुष्यों में एक समय कम अंतर्मूर्त प्रमाण कहा है क्योंकि उनकी वो जगन्य आयु है। इनमें इसका उत्कृष्ट काल काय स्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है, मात्र इनमें सम्यक्त्व का उद्वेलना और क्षपणा की अपेक्षा तथा सम्यक मिथ्यात्व का उद्वेलना की अपेक्षा अनंतानुबंधी चतुष्क का संयोजना होकर सासाधन गुणस्थान के साथ विवक्षित पर्याय में एक समय रहने की अपेक्षा और स्त्रीवेद का उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के बाद एक समय तक अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के साथ विवक्षित पर्याय में रहने की अपेक्षा, ये सबकी अपेक्षा बता दिए कैसे कैसे एक समय घटित होता है। उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल एक समय बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है। सम्यक्त्व में कौन कौन सी अपेक्षा उद्वेलना की भी होती है और कृतकृत्य वेदक की भी होती है,
ये जब भी उत्कृष्ट हो जाएगा उसके पश्चात एक समय के पश्चात मरण करके देव में जाएगा वही अपेक्षा
कौन सी,
ये कृतकृत्य वेदक है, अनुत्कृष्ट की बात चल रही है ना,
अनुत्कृष्ट की बात
तो एक समय में देव में चला गया वही लेना पड़ेगा ना, उद्वेलना अरे सम्यक रूप सभी प्रकृति हो गई सम्यक मिथ्या उत्कृष्ट हो गया और पीछे
एक समय में कृतकृत्य वेदक नहीं होता है। देखो इनका प्रश्न क्या है कि दर्शन मौखिक क्षपणा करते हुए सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप से हो गया तो उत्कृष्ट हो गया है ना,
हाँ,
तो एक समय में मर कर देव में गया तो कहते एक समय में वह मरेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप हो गया तब 8 वर्ष की स्थिति बाकी थी सम्यक प्रकृति की,
नहीं नहीं ये तो दर्शन मौखिक क्षपणा की बात है,
मैं दर्शन मौनि की बात कर रही हूँ, जब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप हो गया है तब सम्यक प्रकृति में 8 वर्ष के निषेक बाकी है, फिर उसके अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त प्रमाण कांडक हो गए बहुत बार, तब जाके अंतर्मूर्त स्थिति रहेगी तब उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक, तो कृतकृत्य वेदक होने तक मरण नहीं होता है। तो यहाँ हमने जो घटित किया है
पर यहाँ पे सम्यक्त्व का सपना की अपेक्षा भी बताया,
वही तो मनुष्य नहीं मरकर,
अच्छा मनुष्य
मनुष्य पर्याप्त में पुरुष वेद में मनुष्य नहीं में तो कोई उत्पन्न नहीं होगा, तो मनुष्य नहीं में तो उद्वेलना ही लगाना, क्योंकि कृतकृत्य वेदक तो मनुष्य नहीं में उत्पन्न नहीं होगी। और ये मनुष्य नहीं जो भाव से स्त्री वेद है और द्रव्य से पुरुष है वो तो भोग भूमि में होते नहीं है। भोग भूमि में जो जिसका वेद है वो द्रव्य का भाव का सेम है। और वहां मनुष्य नहीं तो हम स्त्री मनुष्य को ही मनुष्य नहीं कहेंगे वहां पर।
कृतकृत्य वेदक पुरुषवेद वाला पुरुषवेद में उत्पन्न हो सकता है मनुष्य?
बिल्कुल होगा ही, हो सकता है ना, होगा ही
नहीं मनुष्य से मनुष्य में
होगा ना। शायिक समय दृष्टि कृतकृत्य वेदक है ना, तो पुरुष में ही होगा, मनुष्य में होगा ही नहीं।
सॉरी सॉरी,
हो सकता है की बात नहीं, होगा तो
नहीं, देव नरक में भी जा सकता है पर पुरुष वेद के मनुष्य में भी जा सकता है।
नारकी में तो नियम से नपुंसक वेद होगा
हाँ।
परंतु देव में जाने वाला, तीरिंच में जाने वाला और फिर भोग भूमि का मनुष्य होने वाला पुरुष वेद में ही जन्मेंगे, ये तो नियम है क्या नहीं? यानी जहाँ वो कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न होते, अभी मनुष्य नहीं है, लब्ध्य पर्याप्त है, तो उसमें तो उद्वेलना वाला ही लेना। और जहाँ क्षपणा की अपेक्षा हो सकती है,
मनुष्यनि की अपेक्षा,
मनुष्यनि क्षपणा करके मनुष्य पर्याप्त में उत्पन्न हुई है। कृतकृत्य में मनुष्य में उत्पन्न हुई।
यहाँ पे भी एक समय कैसा घटित होगा, क्योंकि पहले जो पहले काल में मरेगा वो देव में जाएगा, पीछे मनुष्य में जाएगा, पीछे तीरेन में जाता है, लास्ट वाला नरक में जाता है, तो एक समय नहीं घटित होगा ना?
एक समय बाकी रहते हुए कहीं भी उत्पन्न हो सकता है।
अच्छा, मैं इससे सोच रहा था कि
पहला वाला तो देव में जाएगा
हाँ, पक्का,
दूसरे में देव या मनुष्य में जाएगा
हाँ, तीसरा वाला
में देव मनुष्य या तिरंश में जाएगा।
अच्छा, तीनों में,
चौथा देव मनुष्य तिरंश नरक में जाएगा। क्योंकि वहाँ उसका मरण कहाँ होता है उसकी बात है ना, तो यानी लास्ट में मरने वाला चारों गति में जा सकता है। ये तो हमने एक समय की बात देखी, अनुत्कृष्ट का एक समय होता है जघन्य काल, तथा चार संज्वलन और पुरुष वेद की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त जो ओघ से घटित करके बतलाए हैं वह मनुष्य त्रिक में संभव है, इसलिए उनमें इनमें उक्त प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। मनुष्य त्रिक यानी सामान्य से उन्होंने लिया है, अलग अलग भी घटित करना है तो घटित तो हो सकता है, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त और या मनुष्य नहीं हो क्षपणा तो वे भी करते
और वहाँ पे तो काली अंतर मिलते।
परंतु अगर मनुष्य नहीं में हम देखेंगे, मनुष्य नहीं का अर्थ क्या है, स्त्री वेद के सहित चल रहा है ना
हाँ। नहीं, मनुष्य भी क्या आयु भी अंतर्मूर्त वाली हो सकती है ना, तो अनुत्कृष्ट का काल भी अंतर्मूर्त घटित हो जाता है, उसकी आयु भी अंतर्मूर्त वाली हो,
अंतर्मूर्त वाली घटित होगी। पर आयु का अंतर्मूर्त और वहां का अंतर्मूर्त इसमें कोई वेरिएशन होगी कि नहीं
होगी?
सपना में जो उत्कृष्ट करने के बाद जो अंतर्मूर्त है
वो छोटा होगा,
तो छोटा होना चाहिए। देव गति में देवों में मिथ्यात्व 12 कषाय और 7-9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वो जो पहले गुणित कर्मांशिक से आया है और यथा योग्य काल में देव में उत्पन्न हुआ है।
12 कषाय लिए
हाँ,
12 कषाय
लिए हाँ,
अनंत अनुमति,
अनंतानुबंधी में भी लेना है, उसका अनुत्कृष्ट का विकल्प अलग होगा।
अंतर्मुख
मिथ्यात्व बारह कषायर सात नौ कषायर के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सब समान होगा। देखो फिर पढ़ते मिथ्यात्व बारह कषायर सात नौ कषाय उत्कृष्ट कब है पहले समय में यानी जगन्य उत्कृष्ट एक समय के लिए अनुत्कृष्ट का जगन्य काल एक समय कम 10,000 वर्ष यानी पहला समय माइनस करके मिनिमम आयु ली और उत्कृष्ट काल 33 सागर क्योंकि अनुत्कृष्ट ही है ना वो पूरा 33 सागर लिया है वहां तो कोई पहले समय में उत्कृष्ट वाले की बात है ही नहीं देव इन जनरल बात कर रहे हैं पूरे की वहां अलग अलग देवों को अलग अलग नहीं गिना रहे तो देवों में अनुत्कृष्ट 33 सागर है। इसी प्रकार सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा काल जानना चाहिए इतनी विशेषता है यानी उत्कृष्ट लिए के उसका भी एक समय तो घटित होता है उत्कृष्ट के लिए अनुत्कृष्ट में जो वेरिएशन है वो बताएंगे इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल एक समय है वहां उनका कितना था एक समय कम 10,000 वर्ष जगन्य काल अनुत्कृष्ट का यहाँ अनुत्कृष्ट का जगन्य काल कितना है एक समय
उद्वेलना की अपेक्षा
उद्वेलना भी होती है अनंतानुबंधी में सासादन की अपेक्षा भी होती
है
और उत्कृष्ट काल वही है
सम्यक्त्व में कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा भी हो जाएगी।
हाँ सम्यक्त्व में कृतकृत्य वेदक और उत्कृष्ट काल वही है का अर्थ क्या है
उत्कृष्ट उनका अपना
33 सागर कहेंगे अपना अपना इसमें अभी देव इन जनरल सामान्य बात कर रहे हैं अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल क्योंकि वहां जो देवों में जो है वेदक समय दृष्टि सूक्ष्म समय दृष्टि तो लगातार इतने काल तक उनकी सत्ता बनी रहती है तीनों की सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और अनंत अनुबंध यानी जिसने विसर्जना नहीं की है उसका अनुत्कृष्ट लगातार चल रहा है। पुरुष वेद और नपुंसक वेद का काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए इतनी विशेषता है इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल 10,000 वर्ष है यानी अनुत्कृष्ट के साथ ही आया हुआ है और उत्कृष्ट काल 33 सागर है इसका विशेषार्थ कल पड़ेगा। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक